सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षा पे चर्चा 2025 पर बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
नमस्कार, परीक्षा पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज। डॉक्टर संयम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
डॉक्टर संयम, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये जो एक नई चीज की शुरुआत करी थी, लगभग 8वां संस्करण है ये, तो ये परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए, बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या महत्व है? क्योंकि आमतौर पे आज से 8 बरस पहले अगर बात की जाए तो इस तरह की सोचना भी शायद कुछ दूर की कौड़ी होती थी।
जी जी, देखिए, मैं ये कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात पर चर्चा प्रारंभ की है जिस बात पर शायद घरों में चर्चा नहीं होती। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया और कंपटीशन टफ होता चला गया, तो उस ड्यूरेशन में कहीं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में या दोनों पेरेंट्स का सर्विंग होना, कोई भी कारण ना हो, ये डिस्कनेक्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर के आने से मेरे ख्याल से, मैं कहूंगा पूरे विश्व में मात्र एक ऐसे लीडर हैं जो कि बच्चों के विकास पर, उनकी पढ़ाई पर स्वयं ध्यान देते हैं, पूरा समय निकालते हैं। उनका साल भर का ये जो दिन है, ये नियत है जिस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है कि आप मेरे से अगर रूबरू भी नहीं हो पाते तो उस पुस्तक को पढ़कर आप मेरे मन की बात समझ सकते हैं।
शायद आप एग्जाम वॉरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम वॉरियर के बारे में
लोकप्रिय बुक है। तो ऐसे में उनके द्वारा जो किया गया प्रयास है वो अद्वितीय है। और मैं ये कहूंगा कि जब मैं स्कूल्स में कभी जाता हूँ, मैं प्रिंसिपल से मिलता हूँ, मैं बच्चों से मिलता हूँ, तो मैं पाता हूँ, मेरा एक बात उनसे जरूर होती है कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरीके से अच्छा लगता है। तो वो जरूर ये कहते हैं कि वो लोग भी इस बात का इंतजार करते हैं कि ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब होगा और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और जिस साधारण भाषा में समस्याओं का समाधान होता है वो तो अभूतपूर्व है। तो मैं तो कहता हूँ माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चों और माँ बाप के बीच में वो जो डर की दीवार है या जो गैप है वो इसी तरीके से समाप्त होना चाहिए जैसे देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच में होता है।
आपकी बातों से जो मैं समझा कि पहले क्या होता था, पूरा परिवार बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था, मानसिक तौर पर भी, न सिर्फ की किताबी तौर पर, मानसिक तौर पर भी। तो प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद ऐसा हुआ चूंकि जैसा आपने कहा कि कॉम्पिटिटिवनेस इतनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा प्रतियोगिता बढ़ गई, हर आदमी, हर परिवार ही चाहता था कि बच्चा उसकी अच्छी से अच्छी प्रतियोगिता में सफल ही हो, और सिर्फ सफलता के लिए वो पढ़ाई कराया करते थे। तो पूरा परिवार का एक जो दबाव होता था बच्चे के ऊपर वो सिर्फ इस बात के लिए होता था कि उसको सफल होना है और हर निश्चित तौर पे ही सफल होना है।
तो
प्रधानमंत्री जी ने शायद इस चीज को पहचाना और उन्होंने एक दोस्ताना व्यवहार बच्चों से कायम किया अपनी वाकपटुता से, जिससे कि बच्चों में भरोसा कायम हो कि परीक्षा कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है और ये एक सामान्य सी चीज है। अगर इसमें, क्योंकि उन्होंने अपनी आज के उसमें ये भी कहा कि अगर हम असफल हुए तो असफलता के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए मानसिक तौर पर। तो प्रधानमंत्री जी की इन सारी पहल का कितना सकारात्मक वातावरण तैयार होता है, कितना सकारात्मक असर पड़ता है बच्चों पर ही नहीं, अभिभावकों पर भी?
देखिए, मैं अभिभावकों से भी दूर जाऊंगा, मैं कहूंगा स्कूल के ऊपर भी पड़ता है, स्कूल के टीचर्स भी समझ पाते हैं, वो भी बच्चे को जब साल भर पढ़ाते हैं तो ये जो मंत्र उनको मिलते हैं, ये जो शिक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनको मिलती है, ये सब उनको क्लासरूम मैनेजमेंट में सहायक होती है। पूरा वातावरण चेंज हो जाता है, बच्चों का जो स्ट्रेस है वो खत्म होती है, जो उनका लर्निंग एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, या जो मैं कहूंगा लेवल है, वो बेटर होता है, वो किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि परीक्षा एकमात्र परीक्षा नहीं है, ये तो यात्रा के बीच का एक स्टेशन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी आएंगी जिनकी तिथि हमको नहीं पता होगी, जिनका स्टैंडर्ड हमको नहीं पता होगा, जिनका सिलेबस हमको नहीं पता होगा, जिसमें प्रश्न किस तरीके के आएंगे हमको नहीं पता होगा, लेकिन वो परीक्षाओं में भी हम बैठेंगे और उनको उत्तीर्ण करेंगे। और उसका रीजन क्या है? वो रीजन केवल यही है कि हम उन परीक्षाओं के लिए अपने आप को समय के साथ साथ तैयार करते हैं, बड़े होते हैं, विकसित होते हैं। और जब ये स्कूली परीक्षाओं की बात होती है तो ये तो परीक्षा क्या है, मैं कहूंगा कि बोर्ड के द्वारा नई शिक्षा नीति में उसको कहा गया है कि तुम्हें कितने नंबर लेकर आओ, इतना ज्ञान प्राप्त करो, और इस ज्ञान प्राप्ति के लिए एक बार नहीं दो बार की जो आपको लिबर्टी है वो लिबर्टी मिलती है। हम फेल को फेल मानते ही नहीं, हम बात ही नहीं करते फेल की, हम तो एसेंशियल रिपीट की बात करते हैं कि ठीक है आप अगर कहीं कुछ आपको लगता है कि मेरे ज्ञान में कमी रह गई है उसके असेसमेंट में तो हम उस पर दोबारा चले जा सकते हैं। तो इसका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पेरेंट्स का भी विचार जो है वो परिवर्तित होते हैं, वो बच्चे के साथ घुलते मिलते हैं। और निश्चित मानिए अगर कभी कोई स्टडी करने का ऐसा मौका मिले, और हमको करनी भी चाहिए, कि परीक्षा पे चर्चा, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन बच्चों ने सुना, और वो बच्चे जिन्होंने नहीं सुना, उनके परिणाम किस तरीके के रहे, आपको जरूर अंतर पता चलेगा।
बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। अच्छा, आमतौर पे बोर्ड परीक्षाएं का एक स्तर काफी ऊंचा माना जाता है, और इसमें सफलता या इसके अंक जो है चूंकि वो जीवन भर कहीं ना कहीं आपके काम आते हैं, तो तनाव होना स्वाभाविक है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने तनाव के बारे में भी कहा कि मन की जीत होनी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री जी की पहले बात सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे वो लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
प्रधानमंत्री जी के इस बात के बाद ये जो कहना कि परीक्षा में सफलता के लिए मोदी जी ने किताबी कीड़ा न बनने की सलाह दी, इसका सरल भाषा में क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जितना भी ज्ञान है या जितना भी जो परीक्षा से संबंधित जो भी कुछ आना है वो कहीं ना किताबों में समाहित है।
देखिए क्या है, बहुत छोटी सी बात है कि एक समय से हमारी परीक्षाएं शुरू हुई और परीक्षाओं के बाद एक थर्ड पार्टी असेसमेंट बोर्ड की तरफ से हुआ। जब ये थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है तो बच्चों को कुछ स्ट्रेस या तनाव होना स्वाभाविक है। बच्चे अपने स्कूल में भी वही परीक्षाएं देते हैं, उनको वहां पर कोई जो तनाव है वो नहीं होता। वहां पर भी प्रश्न पत्र उनके सामने होता है, वहां पर भी उत्तर पुस्तिका उनके सामने होती है, वहां पर भी इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि ये दो कक्षाएं जो हैं ये लैंडमार्क स्टॉपेज हैं हमारी लाइफ के। तो संभवतः बच्चों को ऐसा महसूस होता है इन परीक्षाओं में हम बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करें और देखें। मेरी अपनी ओपिनियन ये है यहाँ पर कि बिल्कुल हमको कोई भी परीक्षा हो, वो हम खेल खेल रहे हो, कोई अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, हम अपनी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हो, हम कोई लेख लिख रहे हो, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको हमको सर्वोत्तम करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप प्रयास जरूर करें, लेकिन एक बात और है, प्रयास 11th आवर पर जाकर करें या पूरे समय में करें, साल भर करें, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम साल भर ये अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और रोज पढ़ते हैं, कुछ समय हम अपना देते हैं और एक टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं, तो जो ये स्ट्रेस की बात है ये खत्म हो जाती है। अब किताबी कीड़ा बनने की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है, किताब में ज्ञान हो सकता है लेकिन जीवन ज्ञान तो आपको बाहर ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में जरूरत यह है कि आप पहली बात स्किल पर जाएं, देखें कि किस तरीके से कर सकता है, अपनी योग्यता को पहचाने। आपको ये देखना चाहिए, अभी जो स्ट्रेस बहुत बड़ी एक जो कारक बन के आ रहा है कि होता है कि मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ, ठीक है, मैं इंजीनियर बनने के लायक नहीं हूँ, उस स्थान पर जितने एडमिशन होने हैं मैं, हो सकता है मैं वहां ना जा पाऊं, लेकिन मेरे लिए दूसरे बहुत अच्छे अवसर मौजूद हैं। अब आप अगर देखिए खाना बनाना सीखना और उस पर आज की तारीख में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे शेफ बन चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पूरे संसार में नाम है। तो डिफरेंट क्षेत्रों में जाकर भी काम कर सकते हैं। तो किताबी कीड़ा ना बनकर उनको सामाजिक बनने का प्रयास करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये ज्ञान लेने के बाद मैं उसका सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ, और वो सदुपयोग करना ही हमारी जीत है।
संकल्प और जो संभावनाएं हैं वो असीमित हैं, वो सीमित नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है या किसी एक विशेष क्षेत्र में ही जाना है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ साथ तकनीक पे भी जोर दिया कि तकनीक का सदुपयोग कर, क्योंकि तकनीक के मामले में आज देखिए आज के जमाने में मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे अपना पर्सनल कंप्यूटर हो, ये बहुत सहज सुलभ है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं प्रधानमंत्री जी का क्या वक्तव्य था टेक्नोलॉजी के बारे में।
से चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं।
आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है, और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ क्या, उसी में समझ जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊँ, उसके एनालिसिस में जाऊँ, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी।
तो प्रधानमंत्री जी ने जो तकनीक की बात करी, तकनीक के बारे में आप कितना सहमत है कि तकनीक का कितना सुविधा से और कितनी विश्वसनीयता से उपयोग किया जा सकता है आज के दौर में छात्रों को?
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो गुरु मंत्री नहीं, वो और बच्चों के लिए नहीं, वो हमारे और आपके लिए भी है। अगर हमको वृद्ध होना है और होना ही है तो हमको तकनीकी से अलग नहीं होना, टेक्नोलॉजी से अलग नहीं जाना। टेक्नोलॉजी के साथ जब हम जुड़े रहेंगे तो हम समाज के साथ, दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे। बच्चों को जो उनका ज्ञान है वो ज्ञान ये है कि आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि एक प्रोफेसर को जिसको हम देख नहीं सकते थे, जिसको हम सुन नहीं सकते थे, जिसका लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते थे, वो असीम संभावनाएं आज भारत में और कोने कोने में उपलब्ध है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद हम अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। इसके लिए सुबह का समय ही निश्चित नहीं है कि स्कूल में बैठेंगे तभी करेंगे, हम किसी भी समय पर अपनी जो समय की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से तकनीक का उपयोग कर हम देख सकते हैं कि हम कितना ज्यादा ज्ञान जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तकनीकी हमको वो डिसिप्लिन भी सिखाता है, ठीक है, हमको बैठना होगा, हमको अपने ज्ञान को, अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना होगा, उनको सुनना होगा, उनको समझना होगा। तो फेस टू फेस में तो क्या होगा कि आप बैठेंगे और वार्तालाप होगा, जो भी है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तकनीकी में जब आप सुन रहे होंगे तो आपको एप्लीकेशन करना, उसको सुनना, उसको समझना, उसको ग्रहण करना अपने आप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है तकनीकी का। और आप देखिए, कोई नोबेल लिटरेट है, हम उसको अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसका लेक्चर एक पढ़ा हुआ है, हम उसको देख सकते हैं। हमारे को कोई प्रॉब्लम है, हम टीचर के पास नहीं जा सकते, आज आप उसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, टीचर से उसका रिप्लाई ले लीजिएगा। हमारे सारे स्कूल के टीचर एग्जाम से पहले बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो समझाते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं भौतिक विज्ञान का अध्यापक हूँ, तो मेरे पास जो है भौतिक विज्ञान के एग्जाम से पहले दिन बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं उनको रिप्लाई करता रहूंगा। तो ये तकनीक जो है, ये इस टेक्नोलॉजी का हमको सदुपयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कितना ज्यादा ज्ञान जो है इस तकनीक के माध्यम से कर सकते।
आपने अभी एक बात कही थी कि हमें समय का प्रबंधन बहुत समयबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में हम सारा भोजन नहीं कर सकते, और हमें अगर लगातार हमने साल भर अपनी तैयारी की है तो उसके परिणाम बेहतर होंगे, इसके बारे में बताइए।
देखिए, किसी भी सफलता का सूत्र तब तय हो जाता है जबकि हम अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। मेरा मानना है अगर हम अपने पुराने ज्ञान को देखें तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि सुबह उठकर जल्दी से पढ़ने का माध्यम ही कुछ अलग था, फ्रेश माइंड है, हम जो पढ़ते हैं वो तेजी से हमको समझ में आता है। मेरे को तो आज भी जो समस्याएं मैं अपने ऑफिस से लेके जाता हूँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे उनके सॉल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है। तो बच्चों के लिए भी जरूरत क्या है कि अगर अपना एक वो पूरा का पूरा टाइम टेबल बना लें, साल भर का टाइम टेबल बनाए, रोज एक घंटा भी अगर वो देते हैं, मेरा मानना यह है स्कूल के अलावा, और सिंसियरली उसको बैठकर करते हैं, तो परीक्षाओं के आने से पहले वो सब समस्याएं जो स्ट्रेस की हो सकती हैं या जो प्रेशर बिल्डअप करने की हो सकती हैं वो उनके ऊपर नहीं हो।
शायद अगर लक्ष्य की तैयारी पूरी तरीके से की जाए तो ये तनाव और इस तरह की चीजें
खत्म हो जाएंगी
अपने आप ही।
और मैं तो फिर ये कहूंगा इसको हमको पॉजिटिव लेना चाहिए, इस स्ट्रेस को हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी ने आज के वक्तव्य में हैंड राइटिंग पे भी चर्चा करी। हैंड राइटिंग का आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी लिखावट, आपका लेख बहुत अच्छा है या सुंदर है तो आपको अंक प्राप्त करने में कुछ मदद मिलती है, क्या वाकई ऐसा होता है?
नहीं, देखिए, जहां तक मूल्यांकन की बात है वो बच्चे जो लिखते हैं वो कितना रिलेवेंट है उसके ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर राइटिंग साफ होती है और उसको समझने में अच्छा, मतलब आसानी
होती है,
तो जो इवेल्युएटर है, जो मूल्यांकन करता है, उसके लिए ये बात आसान हो जाती है कि उसको जल्दी से समझ के जल्दी से अंक देने की बात हो जाती है।
जी, जी, जी।
तो फिर भी मैं कहूंगा कि राइटिंग साफ होना अपने आप में बहुत जरूरी है, वो हमारे विचारों को जो है प्रदर्शित करता है। अगर हमारी राइटिंग साफ है तो मैं ये कहूंगा हमारा विचार सही है, हम सोच विचार जो है कर रहे हैं वो सही है। अगर गलत होती है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की स्टेट हो सकती है, लेकिन फिर भी ज्ञान ज्ञान है और उसके लिए राइटिंग जो है कहीं
बाधा नहीं है, लेकिन सहायक जरूर है। परीक्षा पे चर्चा पे इतनी सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर संयम भरद्वाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे परीक्षा पे चर्चा 2025 पर बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में